ಮಂಡಲ ಮಂಡಪೇನ ಸ್ಫುರತ್ತಡಿದು ಪಿಂಗ್ ರುಚೋಪ
ಭೂಲ್ ಜಾತೆ ಅಂತ ಭೂಲ್ ಜಾತೆ ಫಿರ್
ರುಚೋಪಸರ್ಗಂ ಜುಗೂಹ ನಾಗೋ ಧರಣೋ ಧರಾಧರಂ ವಿರಾಗ ಸಂಧ್ಯಾಸ್ತವಿದಂ ಬುಧೋ ಯಥಾ. ಐಸಿ ಮೂರ್ತಿ ಉನ್ಕೆ ಸಾಮನೆ ಥೀ ಜಿಸ್ಮೇ ವೋ ಪೂಜಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಫಣಾವಲಿ ಸೆ ಯುಕ್ತ ಔರ್ ಮೂರ್ತಿ ಐಸೆ ಮಾಲೂಮ್ ಪಡ್ತಿ ಹೈ ಜೈಸೆ ಕಿ ತಡಿತ ಪ್ರಸಮ ನೈ ಕ್ಯಾ ಲಿಖಾ ಅಂತ ಮೇ ಜೈಸೆ ಕಿ ಕಾಲೆ ಕಾಲೆ ಬಾದಲೋ ಸೆ ಔರ್ ಪೂರಾ ಆಕಾಶ ಗಿರಾ ಹೋ ಔರ್ ಉಸ್ಮೇ ಸೂರಜ್ ಚಮಕ್ ರಹಾ ಹೋ ಇಸ್ ತರಹ ಕಿ ಕಲ್ಪನಾ. तो अपन को जो है इसमें ये देखना चाहिए कि भगवान की वितरागता महत्वपूर्ण है या कि फणावली महत्वपूर्ण. अब सो तो ऐसा अगर अपन देखें तो चिन्ह बने हैं 24 भगवान के, 13 में विमलनाथ काहे का चिन्ह बोल रहे हो, अब वो सूकर का चिन्ह बना नीचे, जब जलधारा करोगे तो सू सही है ना, 13 में विमलनाथ सूकर का चिन्ह. अब सूकर का चिन्ह बनाया है उसमें तो आपने जब प्रणाम किया था तो भगवान को किया था कि उसको, भगवान को किया था. जल धारा करेंगे तो उसके ऊपर से जाएगी, तो क्या सूकर के ऊपर से गई कि भगवान के ऊपर से गई. इसलिए स्थापना निक्षेप में ऐसा मान के चलना कि उनकी पूजा अभिषेक में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं. मेरा मन दोनों स्थितियां हैं, ऊपर से भी करने वाले करते हैं और नहीं. हाँ, अच्छा आप कैसा करते हैं? बहुत अच्छा. बहुत अच्छा रहा, काहे को बेकार परेशान. लेकिन वो जो एक व्यक्ति ऊपर से करता है वो मेरे सामने कहेगा अगर, तो मैं उसको भी यही कहूंगा कि बहुत अच्छा. दोनों स्थितियों में देखो जिसकी जैसी भावना है उसके लिए दोनों चीजें हैं. पूरी प्रतिमा को हम भगवान की मान रहे हैं भैया, वहाँ हमारी दृष्टि सर्प पर नहीं है. लेकिन जिसकी दृष्टि सर्प पर चली गई है तो आप आराम से भगवान के माथे पर, और है क्या वहाँ पर पाषाण के अलावा कुछ है क्या? ये तो हमारी श्रद्धा है कि हमने उस पाषाण को भी भगवान मान लिया है और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान मान करके पूजा अर्चना कर रहे हैं, वरना वहाँ क्या है. इसलिए इसको दोनों स्थितियों में मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता. कुछ उपाय बताइए, मैं आपसे अलग से मिलूं, मतलब मेरे से आप अलग से बात करें. छोटे से बेटे का होगा, मैं पूरी बात समझूं. ऐसा एक बेटा और विदिशा में आया था, उसके पिता ने उसकी शिकायत की थी कि उसका पढ़ने में नहीं मन नहीं लगता. तब फिर मैंने उससे अलग से पूछा तो उसने खुद ही कहा कि हाँ मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है. किस किस चीज़ में मन लगता है तो पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है और फिर कैसे उसका मन पढ़ने में लगे. मैं इसको अलग से करूँगा, इसका जनरल आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ज्ञानावरण का शौकसम होते हुए भी अगर हमारा अपना रुझान जिस तरफ है उस तरफ ही हमारा मन लगेगा. ज़रूरी नहीं है कि हमारा पढ़ने में मन लगे ही, और दूसरी चीज़ों में भी लग सकता है जिनसे कि हमें ज्ञान हासिल होता है. कई बच्चे किताब के बिना भी बहुत सारी चीज़ों से ज्ञान हासिल करते हैं. तो देखना ये पड़ेगा कि ज्ञान ही हासिल नहीं हो पा रहा है या कि सिर्फ पढ़ने में चित्त नहीं लग रहा. आपके मन का जॉब है कि नहीं है ये भी है. ये मैं अलग से, बेटे जिसने लिखा है वो मेरे से दोपहर वाले टाइम में, 3 से 4 वाले टाइम में मैं अलग से बात करूँ. क्या बेटी लोग जो है उनको साड़ी पहन के हार देना जरूरी है क्या? अरे वाह, तो क्या आप सूट पहन के देना चाहते हैं? तो आप अगर सूट पहन के देंगे तो पहले ये तय कर लो कि कोई आपका 16 मानेगा कि नहीं मानेगा. कोई भी नहीं मानेगा, देख लेना आप सूट पहन के. और सबसे बड़ी चीज देखो, जब हम स्कूल जाते हैं जिसमें हम लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें भी हमारा एक यूनिफॉर्म होता है, और उसको पहन के हम कितना अच्छा फील करते हैं कि अरे वाह अब हम स्कूल की ड्रेस पहने हुए हैं, और हर्ष मानते हैं उसमें. और इसी तरह अगर हम ये मान लेवें कि हमको आहार देने की और पूजा करने की ये यूनिफॉर्म है, तो उस यूनिफॉर्म को पहनने में अपने को हर्ष ही मानना चाहिए, उसमें दुख नहीं होना चाहिए कि अरे ये बलाएँ कहाँ से आ गई, ऐसा ना सोच करके. और धार्मिक अनुष्ठानों में पहने तो अच्छा ही है भैया। क्यों अपन बचना चाहते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे अपन, सब इसी तरह से करने लगेंगे धीरे धीरे करके। शुरू तो हो गया है, पूजा वगैरह में तो शुरू हो गया है, सूट पहन करके भी और ऐसे कपड़े पहन करके, भाई लोग भी ऐसे ही पैंट शर्ट पहन करके और सब करने लगे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज मिलेगा, कल के दिन कोई पंचा पहनने वाला और धोती पहनने वाला और दुपट्टा ओढ़ने वाला कोई मिलेगा नहीं। हमने बड़ी मुश्किल में तो ये परंपरा बना पाई थी और भली थी, कोई ऐसा नहीं कि बुरी हो, बुरी हो तो अपन खत्म कर दें, अच्छी परंपरा बनाई थी, हमारी अपनी भारतीय संस्कृति का सूचक है वो। हम गर्म देश में रहते हैं भैया, इसलिए हमने अपना यूनिफॉर्म भी गर्म देश के हिसाब से चुना, ना हमने टाई चुनी, ना सूट चुना, ना बूट चुना, ना हैट चुना, ताकि टकार है ही नहीं कहीं भी। हाँ, हमने अपनी संस्कृति के हिसाब से, ठंडे प्रदेश में तो बांधना पड़ेगा, गले में भी बांधना पड़ेगा, बिल्कुल बंद कर करके रहना पड़ेगा, शॉक शूज भी पहनना पड़ेंगे, सब कुछ हैट भी लगाना पड़ेगा। लेकिन गर्म प्रदेश में तो एक ठो दुपट्टा डाल लिया, थोड़ी सी धोती लपेट ली और बस हो गया अपना काम। इसलिए हमने वैसी यूनिफॉर्म चुनी है, उसी का उपयोग करना चाहिए भैया। थोड़ी तकलीफ तो होगी आपको, साड़ी बांधने में तकलीफ तो होती है, लेकिन साड़ी जब पहनते हैं तब कैसे चलते हैं, बहुत शालीनता के साथ, दौड़ धूप नहीं कर सकते, गड़बड़ सड़बड़ नहीं कर सकते उसमें, बड़े आराम से चलेंगे, बिल्कुल शुद्धिपूर्वक क्रियापद, जैसे जैसे महाराज जी चलते हैं चार हाथ आगे देख करके, ऐसे बढ़िया से अच्छा लगता है उसमें। किसी को जब कष्ट पहुँचता है तब, अरे वाह, किसी को जब कोई तकलीफ या दुख होता है तो अपनी माँ की याद क्यों आती है, पिता की क्यों नहीं आती सही है सही है, क्योंकि उसने, माँ ने सबसे ज्यादा कष्ट हमारे लिए सहा है, और जो हमारे लिए कष्ट सहता है, जब हम कष्ट में होते हैं तो उसे ही याद करते हैं, क्योंकि उसी से सहायता मिलने की आशा। इसीलिए हमने शुद्ध देवता ना कह करके जिनवाणी माँ कहा, मातेव बालस हितानुशास्ता, भगवान को कह रहे हैं कि आप माँ के समान हैं, हे भगवान, जैसे माँ अपने बच्चे का हमेशा हित ही चाहती है, कभी अहित नहीं चाहती है, कितने ही खराब से खराब, कुरूप से कुरूप बेटा भी क्यों ना हो, कितने ही बिगड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन जब चाहेगी तब हित ही चाहेगी, और जो हित चाहने वाला है, हमारे दुख को समझने वाला है, उसी के सामने तो अपना दुख कहा जाता है, उन क्षणों में उसी को तो याद किया जाएगा। एक जगह लिखा है कि आंसू उस जगह आए जहां आंसू की कीमत समझी जाए, दुख वहां कहां जाए जहां की कोई दूसरे के दुख में स्वयं दुखी हो सके, तब जाकर के व्यक्ति वहां अपने दुख को कह पाता है, और जहां किसी के दुख का मजाक उड़ाया जाए, जहां किसी के आंसुओं को कमजोरी माना जाए, वहां किसके आंसू आएंगे और कौन अपना दुख प्रकट करेगा, कोई नहीं करेगा। भावनाओं का एक्सप्रेशंस भी वही होता है जहां की सामने उस चीज की समझ होती है, इसलिए शायद यही लिखा है, कभी भी किसी को दुख होता है तो माँ की याद आती है। आचार्य महाराज ने आपको जब से धर्म प्रभावना के लिए भेजा, तब से आपने क्या क्या अनुभव किया, और कब से भेजा, तो 1986 में, 80 से लेकर के 85 तक के चतुर्मास तो आचार्य महाराज के सानिध्य में किए, फिर उसके बाद 86 से अभी तक आचार्य महाराज जहां आज्ञा देते हैं वहां पर, और करता रहता हूं। मेरा अनुभव क्या है, मेरा अनुभव ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ और आचार्य महाराज के नाम से और मेरा काम चलता रहता है, आचार्य महाराज का ऊपर बोर्ड लगा देते हैं, अपन नीचे बैठ जाते हैं, ब्रह्मचारी कह के आए थे कि आचार्य श्री का नाम ऊपर और नीचे अपन बैठे, सारा काम आसानी से चलता रहता है। हाँ, अपनी योग्यता और क्षमता नहीं होने के बाद भी काम आसानी से चलता रहता है, ये हमने जीवन में अनुभव किया। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जगहों पर मुश्किलों के बावजूद भी सारी चीज़ें आसान हो जाती। मुझे हमेशा याद रहता है एक बात, ग्वालियर में मेरे जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी, जिसमें कि कुछ भी नहीं किए जाने पर भी अगर दोषारोपण हो और वो भी एक साधु के द्वारा दूसरे साधु पर हो, कैसा लगता है। और पत्रकारों के द्वारा जोड़ करके और पेपर में निकालना शुरू हो जाए, 3 दिन तक वह प्रक्रिया चलती रही। मैं दम साधे चुपचाप रहा कि ठीक है, सब चीज़ें, इसलिए तो मेरे मुंह से उस दिन निकल गया था कि मैंने सम्मान भी देखा है, अपमान भी सहा है, सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ, कोई बात बड़ी, लेकिन दोनों में समता रखना बहुत कठिन है। दोनों स्थितियों में आप कभी कभी हम लोगों के तीर्थ यात्रा के शिखर जी से आगे जाने के संस्मरण सुनेंगे, कलकत्ता जाने के, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, कैसे जो है लोग रोक लेते थे। ग्वालियर की घटना के साथ साथ दूसरी घटना भी याद आ गई, वो भी सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन क्षणों में कौन सहायी होता है, सिर्फ एक ही जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, वही सहायी होता। 3 दिन तक मुश्किल के बावजूद सुबह सुबह 4th दिन और आचार्य महाराज स्वप्न में दिखाई पड़े और आशीर्वाद दे रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं, जैसे कि मैंने कोई मैसेज भेजा हो उनको, कोई मैसेज नहीं भेजा था, लेकिन कह रहे हैं धैर्य रखो, संयम से काम लो, बस इतना ही। और आप आश्चर्य करेंगे कि 12:15 बजे और मैं सामायिक में जाने वाला हूँ, उतने में एक व्यक्ति आते हैं, नमोस्तु महाराज। हाँ भैया, अब समय हो गया सामायिक का। नहीं नहीं, आपसे मिलना ज़रूरी है। क्यों, हम आचार्य के पास से आए, अमरकंटक से 800 किलोमीटर दूर से। हाँ, अब भी आए हम वहीं से। तो हमने कहा हमारे लिए कुछ कहा आचार्य ने, बोले पता नहीं, वो तो सबके लिए आशीर्वाद तो देते ही हैं, लेकिन उन्होंने तो मुँह से बोल के कहा कि कहना उसको आशीर्वाद और संयम से काम ले, बिना उसके, बिना मैसेज के। आप बताइएगा, मैंने कहा ये तो मुझे सवेरे मिल गया स्वप्न में ही कि आशीर्वाद और संयम से काम, वही बात हमने कही। हम जो है अपने भावों से अगर अपने गुरुओं से जुड़े रहें तो बाधाएं भी आसानी से दूर हो जाती हैं। इस तरह की स्थिति बन सकती है, बहुत बहुत जगह ऐसी स्थिति बन जाती। दूसरा वाला क्या कह रहा था, मैं एक और उदाहरण था, वो गायब हो भूली, अब वो एकदम थोड़ी याद आ
रहा है।
ठीक है, तो एक उदाहरण तो हमने, ये हमारे जीवन का अनुभव है कि बहुत बहुत मुश्किलें भी आई, पर फिर भी आचार्य महाराज को याद करता हूँ। कई बार मेरे से कई चीजें नहीं समझ में आती हैं, तब सिर्फ याद करता हूँ। आप आश्चर्य करेंगे, मुझे खुद आश्चर्य होता है कि पूरे 1.5 महीने के प्रवास में महावीर जी में कुल 7-8 दिन ऐसे होंगे जिसमें कि आचार्य स्वप्न में ना दिखे। प्रतिदिन मेरा 1.5 महीने स्वर्णिम गुजरा है महावीर जी, स्वर्णिम जिसको कहते हैं, कोई विकल्प नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई वो नहीं है मन के अंदर कि क्या करना है क्या नहीं करना, कोई प्रवचन की चिंता नहीं। जाकर के बैठ गए आहार के बाद और शाम को बैठ गए, बस उतने में ही लोग, नए नए लोग हैं, रोज आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, कोई बिल्कुल शांति से जो है, किसी चीज़ का विकल्प नहीं, कहीं जाने तक का विकल्प नहीं। कोई कहता था मेरे से, एक बार निवाई के लोग आए थे कि आप निवाई चलो, तो उनको मैं झुंझला पड़ा था कि मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ महावीर जी में, बहुत मुश्किल से तो चल चल के पाँव पैदल आया हूँ, मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहो। और रोज आचार्य श्री दिखाई पड़ते थे स्वप्न में, 2-4 दिन मिस हुआ होगा बाकी। तो अनुभव यही है कि अगर अपन अपनी श्रद्धा रखें तो बहुत आसानी होती जीवन में, समता बनी रहती। हर चीज़ में मुझे डर क्यों लगता है, अरे वाह, ये भी छोटे से बच्चे का है ना। अब देखो, इसके लिए हम आपको छोटे छोटे बच्चों को कैसे समझाएं, हम अलग से छोटे बच्चों से बात कर लेंगे, हम तो उनको समझा देंगे। ये भी छोटे बच्चों की राइटिंग है। इस धरती पर सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, शुरू से है भैया, सब लोग शुरू से हैं। वह क्या होता है अपने यहाँ पर कि जब प्रलय होती है ना, तब 32 जोड़े और स्केटर्ड अलग अलग बिना पेयर के बहुत सारे मनुष्यों को देवलोक गुफाओं में बजा लेते हैं, और फिर बाद में जब प्रलय का काल खत्म हो जाता है तब फिर वो सब बाहर निकलते हैं और अपना जीवन फिर शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे करके और बढ़ना शुरू हो जाता, फिर से डिक्रीज हो जाता, फिर इंक्रीज होने लगता, ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन कभी भी कोई हमेशा समाप्त नहीं होता, जीव हमेशा से है और हमेशा बना है। स्वर्ग नरक क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं कि इस धरती पर ही स्वर्ग नरक है, क्या ये बात सही है? है तो सही, इस धरती पर ही है, इस चित्रा पृथ्वी के नीचे चले जाएंगे तो इसी से लगे हुए हैं नरक, और इस चित्रा पृथ्वी से 1,00,000 योजन ऊपर सुमेरु पर्वत की के ऊपर और 40 योजन और एक बाल बराबर वहां से जो है शुरू हो जाते हैं स्वर्ग। और अगर अपन देखें तो अपने जीवन में भी स्वर्ग नरक है। क्या हुआ था एक बार, एक साधु के पास में एक सेनापति गया और उसने कहा कि क्या बाबा जी तुम लोगों को स्वर्ग नरक का भय दिखा करके और रोजी रोटी कमाते हो अपनी, ये तो अच्छा नहीं लगता, आपको स्वर्ग नरक का भय दिखाते हो। तो साधु जी कुछ नहीं बोले। साधु जी ने ये कहा कि मैंने पहचाना नहीं आप कौन हैं। तो सेनापति ने कहा आप पहचान लो, मैं सेनापति हूं। सेनापति से तो नहीं लगते तुम, ना उतने ताकतवर मालूम पड़ते, आपको मेरी ताकत देखनी है क्या? तुम क्या बताओगे अपनी ताकत, तुम्हारे पास तो तलवार भी नहीं। हे बाबा ठीक से बोल, मेरे पास तलवार भी है। तलवार होगी तो होगी, वो तो बच्चों के पास भी रहती है, वो तो लकड़ी की होती। अरे नहीं, मेरे पास लकड़ी की नहीं, सच्ची सच्ची की है। होगी तुम्हारे पास सच्ची की, उसमें धार है ही नहीं। तो तुम क्या धार देखना चाहते हो? दिखाऊं क्या धार? और तलवार निकाल ली और बाबा की गर्दन पर रख दी। जैसे ही गर्दन पर रखी तो बाबा जी ने मुस्कुरा के कहा कि सेनापति सावधान, इस समय तुम नरक से गुजर रहे हो। हाँ, अब ऐसा सुनते ही सा सेनापति सब पका गया कि बात तो सही है, और सेनापति बहुत दुखी हुआ, तलवार ज्यों की त्यों रख करके चरणों में गिर पड़ा। तो साधु ने फिर उठा के कहा सेनापति अब तुम स्वर्ग से गुजर रहे हो, स्वर्ग और नरक यहीं पर हैं। तो हमारे अपने परिणाम, खोटे परिणाम हमारा नरक है और अच्छे परिणाम हमारा स्वर्ग है। जिसको करने से मन हल्का हो जाता है वही तो धर्म है, और जिसके मन करने पर छाती पर जैसे पत्थर रख दिया हो वही तो पाप है, वो भारी है, वही नरक ले जाने वाला है। भारी होंगे तो नीचे जाएंगे, हल्के होंगे तो ऊपर उठेंगे। तो स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है, यही तो अपन ने भौगोलिक रूप से भी उनकी स्थिति बताई है, मानसिक रूप से भी और भौगोलिक रूप से दोनों स्थितियों में भैया स्वर्ग और नरक हैं। और टाइम तो जो है पूरा हो गया, कल के प्रश्न ज्यों के त्यों रखे रह गए। जिनके प्रश्न हैं वे आज ले लेवें और कल अपने आप रख देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वो रखे ही रह जाएंगे। ऐसा मैत्री भाव करते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से न